آپ ہیں SBS ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں تھنڈر اسٹارم آستھما کا موسم چل رہا ہے وکٹوریا میں اور ساؤتھ ویسٹ نیو ساؤتھ ویلز میں، اور سرکار نے اس کے بارے میں چیتاونی بھی دے رکھی ہے۔ اب میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ پایا گیا ہے کہ بھارت کے، سری لنکا کے اور دکشن ایشیا کے لوگوں کو اس سے زیادہ پربھاؤ ہوتا ہے، انہیں ریسپریٹری سمسیائیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو ادھارن دے رہی ہوں 21 نومبر 2016 کا۔ اس سال میں آج تک کا سب سے بڑا تھنڈر اسٹارم حادثہ ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں 10 لوگوں کی موت بھی ہو گئی تھی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مرتکوں میں سے 6 لوگ بھارتیہ، سری لنکائی اور دکشن ایشیا کے تھے، اور مول روپ سے ان دیشوں کی پرشٹ بھومی سے آنے والے لوگوں کی ریسپریٹری سمسیا کو لے کر 39% سنکھیا زیادہ ہے باقی لوگوں کی تلنا میں۔ اس سال وشیشوں نے چیتاونی دی ہے کہ لانگ یا پیٹرن کے کارن تھنڈر اسٹارم یعنی طوفان اور بادلوں کے گرجنے سے آستھما کی بہت بڑی رسک ہو جائے گی، یعنی دمے کی بہت بڑی رسک ہوگی۔ 2016 میں طوفان آنے کے 30 گھنٹوں کے اندر سانس لینے میں کٹھنائی سمبندھت 3,365 لوگ اسپتال کے ایمرجنسی وبھاگوں میں بھرتی ہوئے تھے، اور ان میں سے 39% لوگ بھارتیہ، سری لنکائی اور دکشن ایشیا کے تھے۔ تو آئیے اس سلسلے میں ہم چرچا کریں ڈاکٹر ویوم شرما کے ساتھ جو میلبرن میں ہیں۔ ڈاکٹر شرما نمسکار، اور ہندی پروگرام میں آپ کا سواگت ہے۔ ڈاکٹر شرما، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ساؤتھ ویسٹ نیو ساؤتھ ویلز اور وکٹوریا میں تھنڈر اسٹارم آستھما سیزن کی چیتاونی دی گئی ہے، تو یہ تو ہوا کہ طوفان اور جب بادل گرجتے ہیں تو کیا لوگوں کو آستھما زیادہ ہوتا ہے؟ یہ ہمیں ذرا سمجھائیے۔
جی ہاں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بار اگر طوفان گرجتا ہے تو تھنڈر اسٹارم آستھما ہوگا۔ تھنڈر اسٹارم آستھما تب ہوتا ہے جب جب کلائمیٹ کی کنڈیشنز بہت ایک کائنڈ کی ہوتی ہے، ایک طرف کی ہوتی ہے کہ ہوا میں کچھ امس ہو اور تھنڈر اسٹارم بھی ہو، اور ہوا میں ایک اور انگریڈینٹ چاہیے، پولن، جو گھاس اور پھولوں سے آتا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں ایک بہت اسپیسیفک مکس میں ہوتی ہیں تب کچھ لوگوں کو، یا پھر مجھے کہنا چاہیے کافی لوگوں کو، یہ تھنڈر اسٹارم آستھما ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ہر بار اگر طوفان آیا تو ایسا ہوگا، لیکن کچھ کچھ بار ایسا ہوتا ہے، اور جب گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے تو پھر وہ یہ چیتاونی دیتے ہیں کہ تھنڈر اسٹارم آستھما ہو سکتا ہے آپ کو آج۔
جی بالکل، اوکے۔ وشیشگیہ جو ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لانین یا پیٹرن کے کارن اس بار سمر میں جو تھنڈر اسٹارم ہوگا وہ کافی رسکی ہوگا، جوکھم بھرا ہوگا۔ تو لکشن کیا ہوتے ہیں اگر کسی کو یہ آستھما ہو جائے تو؟
تو سب سے پہلے لوگوں کو لگتا ہے کہ کھانسی آ رہی ہے، یا پھر سانس لینے میں کچھ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، سینے میں ٹائٹنس لگ رہی ہے، لیکن اس کے پہلے بھی لوگوں کو باقی لکشن ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ناک سے پانی ٹپکنا، یا پھر آنکھوں یا پھر منہ میں کھجلی ہونی، اور یہ لکشن ہے ایک النس کے ہی فیور، جو کئی لوگوں نے سنا ہوگا۔ ویسے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سے لوگ آتے ادھر اتنا زیادہ ہی فیور نہیں ہوتا، لیکن آسٹریلیا میں آ کے کئی لوگوں کو ایک دو سال یہ لکشن ہونے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ مجھے زکام ہو رہا ہے، لیکن یہاں جو زکام کے سمپٹمس نہیں ہوتے، کیونکہ یہ لوگوں کو روز روز ہوتے ہیں اور ہفتوں تک ایسے سمپٹمس چلتے رہتے ہیں، اور یہ ہوتی ہے یہ چیز ہی فیور۔ تو اگر آپ کو وہ سمپٹمس پہلے لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر تھنڈر اسٹارم آستھما کے بھی سمپٹمس آپ کو ہو سکتے ہیں جب طوفان آتا ہے۔
जी बिल्कुल, ये अच्छा आपने बताया। ऐसा ना हो इन दिनों कि कोविड-19 के चलते लोगों को ये भ्रम हो जाए कि शायद हमें कोविड-19 भी है, लेकिन आप बता रहे हैं कि इसके लक्षण थोड़े अलग हैं, मुंह में खुजली, नाक में खुजली भी होती है।
जी हाँ, तो एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस देखना काफी मुश्किल होता है कि कोविड है या फिर ही फीवर है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये लक्षण आपके आते हैं और फिर बहुत जल्दी चले आते हैं, मतलब तो 1 घंटे के अंदर अगर चले गए, तो इसका मतलब यही लाइकली है कि ये ही फीवर है और कोविड-19 नहीं है। लेकिन असली तो यह है कि कई बार मुश्किल होता है बताना कि ये कोविड है या फिर ही फीवर है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कि मालूम नहीं क्या है, तो आपको जीपी से बात करनी चाहिए। और कभी कभी हम लोग हिस्ट्री है कि सिर्फ बातें करके आपको बता सकते हैं कि आप चिंता मत करो, ये ही फीवर है। कभी कभी हमें आपको टेस्ट के लिए भेजना पड़ता है, वो स्वाब जो टेस्ट होता है कोविड-19 का,
हाँ
और अगर वो नेगेटिव है तब हम लोग कह सकते हैं हाँ ये ही फीवर है।
ठीक है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि ये जो थंडरस्टॉर्म अस्थमा है, दमा है, हे फीवर है, वो मूल रूप से जो लोग भारत के हैं, श्रीलंका के हैं, दक्षिण एशिया के हैं, उन्हें ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है?
जी हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 2016 में जो बहुत बुरा थंडरस्टॉर्म ऐसा हुआ था, तो उसमें बहुत लोग हमारे मुल्क से जो है उनको बहुत ही सिम्टम्स हुए और कई लोग मरे भी। मुझे लगता है कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया के आने से पहले हमें दमा वगैरह ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड पर और मेलबर्न में तो बहुत ही लोगों को ये दमा और ही फीवर जो है डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ घास ऐसी है जिससे जिसका पोलन जो है, पराग उसको हम लोग कहते हैं, तो उससे लोगों को बहुत एलर्जी होती है। तो उसको राय ग्रास इधर बहुत फैली हुई है और काफी जियोग्राफी भी है कि काफी फ्लैट है मेलबर्न जैसी जगह, और हवा जो बहुत चलती है तो ये पराग हर जगह फैलता है।
जी
तो इसलिए हमें लगता है कि इधर कुछ ज्यादा है, इसलिए जो हम लोग सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, तो पहले तो हमें कुछ प्रॉब्लम है दमा वगैरह की। इधर आते हैं तो पहले 1-2 साल में मैं बहुत पेशेंट्स को डायग्नोज करता हूँ कि उनको पहली बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है।
ठीक है। ये बड़ा अच्छा आपने स्पष्ट किया कि क्यों होता है। हम लोगों को आदत नहीं है, और यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का जो पोलन है, घास है, पराग है, वो कुछ अलग है, काफ़ी तेज़ है, जिससे लोगों को हे फीवर, अस्थमा होने का चांस है। अंत में ये बताइए कि क्या इसकी कोई दवा होती है, या क्या करना चाहिए अगर किसी को ये सिम्टम्स दिखाई दें?
देखिए, अगर आपको दमा है या फिर ही फीवर है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप न्यूज में देखते हो कि ये सूचना आई है कि आज थंडरस्टॉर्म ऐसा हो सकता है, तो आपको उस दिन तो जरूर अपनी दवा लेनी चाहिए, जो हम लोग कहते हैं प्रिवेंटेटिव मेडिकेशन। तो अगर आपको दवा है तो आपको उसके उसके बफर उसी दिन लेने चाहिए। हे फीवर है तो नाक के स्प्रे और टैबलेट लेनी चाहिए इसके पहले कि वो थंडर स्टॉर्म आए। अगर जब थंडर स्टॉर्म आया या फिर उसके पहले या उसके बाद में आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है और या फिर कुछ टाइटनेस लग रही है आपके सीने में, तो आप जरूर फिर से वो दवा लो। और अगर आपकी सांस वगैरह ठीक नहीं हुई, आपको सीधे एम्बुलेंस कॉल करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि उन दिनों जब वो थंडरस्टॉर्म एस्मा की वार्निंग बहुत एक्सट्रीम होती है, जितना आप घर के अंदर आप रह सकते हो तो आप अंदर रहो। और अगर आपको सांस वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसा मत करो कि हवा के लिए
बाहर चले
बाहर
जाओ।
चले जाओ या फिर दरवाजा खोलो या फिर आप कुछ खोलो मत, आप अंदर ही रहो। उल्टा अनफॉर्चुनेटली इसी चक्कर में एक डेथ हुई थी 2016 में मेलबर्न में, क्योंकि हमारे कम्युनिटी का कोई था, उन्हें लगा कि अरे इतनी सांस अच्छी सांस नहीं आ रही तो मैं बाहर जाऊं, और उसी के कारण लगता है कि उनकी डेथ हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको अभी मालूम है और जिन दिनों वार्निंग है थंडरस्टॉर्म एस्मा की, आप अंदर रहें, आप अपनी मेडिकेशन रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम सीधे आप एम्बुलेंस कॉल करो और फिर सब ठीक होना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सिस्टम है इन चीजों को रिकग्नाइज करने के लिए और एम्बुलेंस भेजने के लिए, तो अब कोई चिंता की बात नहीं।
जी, आपने ये बड़ी अच्छी जानकारी दी। अंत में एक छोटा सा सवाल पूछूं, शायद आप इसके साथ सहमत न हो। कहते हैं कि जिन्हें आदत है या आदि हो जाते हैं इस पोलन ग्रेन और हे फीवर के, उन्हें अपने नॉस्ट्रल्स में, नथुनों में तेल या क्रीम या घी लगाना चाहिए ताकि पोलन ग्रेन्स अंदर न जाएं। क्या ये सच है?
जी देखिए, नहीं वो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, क्योंकि बात ये कि ये पोलन जो है इतने बारीक, इतने इतने बारीक है, तो और कि वो जैसे आप सांस लोगे अंदर वो सीधे अंदर जाएंगे, तो उसे कुछ रोक नहीं सकते हैं वैसे। तो अनफॉर्चुनेटली उसका उसका कुछ
साइंटिफिक बेस नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। किसी और विषय पर आपसे जरूर फिर से बातचीत करेंगे। थैंक यू।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।